अरुणिमा की सूनी आंखें बस फर्श को घूर रही थी। तभी उसकी नजरों के सामने आस्तिक के पैर आ जाते हैं। वो घबराकर अपना चेहरा उठाकर आस्तिक को देखती है, तो आस्तिक कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, अपनी चीज मेरे बेड से दूर रखना। तुम्हारी जगह यहाँ जमीन में है, तो आइंदा से मेरी परमिशन के बिना मेरे बेड पर अपने गंदे हाथ मत लगाना। आस्तिक के इस खतरनाक ओरे से अरुणिमा डर जाती है और जल्दी से आस्तिक के बेड से हट जाती है। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को घूरता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अरुणिमा का रहा सहा सब्र भी टूट जाता है और वो अपने घुटनों में सर छुपाकर रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद और अपने साथ हुए घटना को याद करने के बाद अरुणिमा बहुत हिम्मत करके दीवार के सहारे खड़ी होती है, पर अचानक से उसके पेट में इतनी तेज दर्द उठता है कि वो दोबारा जमीन पर गिर जाती है। अरुणिमा फिर से हिम्मत करती है और दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। वो अपने बदन पर लिपटी हुए चद्दर को पकड़ते हुए बहुत मुश्किल से ही कमरे के एक कोने में पहुंचती है, जहां पर उसका सूटकेस रखा हुआ था। उसने जल्दी से अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक प्लाजो सूट सलवार का सेट लेकर वो धीरे धीरे कदमों से बाथरूम की तरफ चली जाती है। गर्म पानी का शावर लेने के बाद अरुणिमा तैयार होकर वापस कमरे में आती है। कमरे में आकर वो जैसे ही खुद को शीशे के सामने देखती है, उसकी आंखों में रुके हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं। उसकी पूरी गर्दन इस समय काले और नीले निशानों से भरी हुई थी। उसके हाथों पर काले निशान थी और चूड़ियों के टूटने से जख्म बन गया था। अरुणिमा का वो भीगा हुआ रूप जो एक दिन पहले दुल्हन की तरह खेल रखा था, वही आज मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके होठों के किनारों से खून निकला हुआ था जहां से जख्म बन गया था, और आस्तिक के उस थप्पड़ ने अरुणिमा के गालों को सुजा दिया था। अरुणिमा अपने इस रूप से नफरत कर रही थी और उससे भी ज्यादा वो आस्तिक से नफरत करती रही थी। अरुणिमा का मन कर रहा था कि वो खुद को खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो राजा साहब इस बात का हिसाब सीधे उसके परिवार से लेंगे, और अरुणिमा अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती है। अरुणिमा ने फर्श की तरफ देखा, जहां पर एक मोटा कालीन बिछा हुआ था। उसने सोफे से एक साइड पिलो लिया और उसे ले जाकर फर्श पर रख दिया और खुद उस फर्श पर लेट गई। उसने अपने शरीर को अपने दुपट्टे से ढक लिया था। आस्तिक का हुक्म था कि अरुणिमा बेड पर नहीं सोएगी। वैसे चाहत तो अरुणिमा को भी अब बेड की नहीं थी, उसे बस सुकून की नींद चाहिए थी। शायद उसे जमीन पर ज्यादा अच्छी नींद आती। एक पल के लिए तो अरुणिमा ने यह भी सोचा कि आस्तिक इस समय गया कहाँ होगा, लेकिन फिर उसने अपने इस विचार को झटक दिया और अपने मन में कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं वो कहाँ गए हैं, मुझे बस एक बात की तसल्ली है कि वो इस समय यहाँ नहीं है। अरुणिमा आज बहुत थक गई थी और उसे सच में बहुत सुकून की नींद चाहिए थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और एक अच्छे भविष्य की कल्पना करने लगी और साथ ही साथ ये कहने लगी कि उसकी आंखें अब शायद कभी ना खुले। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक अपनी माँ के कमरे में था और वही पियानो बजा रहा था। आस्तिक का पूरा चेहरा लाल हो रहा था और पसीने से तर था। उसके हाथों की उंगलियों से खून रीस रहा था और सामने उसकी माँ की तस्वीर थी। अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए वो पियानो पर वही खतरनाक धुन बजाए जा रहा था, लेकिन इस बार उसकी तड़प उसके चेहरे पर दिख रही थी। पियानो के बटन टूट चुके थे और उसमें से संगीत की आवाज आनी बंद हो गई थी, लेकिन आस्तिक का खूनी हाथ अभी भी उस पियानो के ऊपर चल रहा था। आस्तिक झटके से खड़ा होता है और तेज कदमों के साथ अपनी माँ की तस्वीर के पास आता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी और उसने अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहा, उसे दर्द हुआ होगा माँ, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर मैंने सोचा कि कम से कम आज तो उसके साथ कुछ भी ना करूं, लेकिन वो लड़की कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं क्या करता माँ, मैंने उसे दर्द देना शुरू कर दिया। उसे कितना दर्द हुआ होगा। वो मेरे सामने रो भी रही थी, पर मैंने खुद को बहरा बना लिया था और ऐसे जताया कि मुझे उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है माँ, जब वो दुल्हन की तरह सच के मेरे सामने आई थी ना, तो एक पल के लिए उसमें मुझे तुम नजर आई थी, लेकिन फिर पता चला कि वो किसी और के साथ रिश्ते में है। नहीं माँ, वो तुम्हारा नाम ऐसे खराब नहीं कर सकती थी। उसे सजा मिलनी जरूरी थी, इसीलिए मैंने उसे सजा दी। अब देखना, वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। वो बहुत अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, बिल्कुल एक खिलौने की तरह। और देखना माँ, वो हमारी सारी बातें मानेगी। आस्तिक किसी पागल साइको की तरह अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रहा था। आस्तिक अपने खून से भरे हाथ से अपनी माँ की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उसे ये सब कह रहा था, जैसे कि सच में उसकी माँ उसकी बातें सुन रही है। आस्तिक की इमेजिनेशन में उसकी माँ हमेशा उसके सामने रहती है और उसकी बातें सुनती है। अरुणिमा उस ठंडे फर्श पर सुकून से सो रही थी। भले ही वो फर्श पत्थर का था, लेकिन उसके लिए ये उसका मुलायम बिस्तर था। उसे बस सुकून की नींद चाहिए थी। जब उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई है, तो वो और किसी से क्या ही शिकायत करेगी। अरुणिमा अपने दुपट्टे को कंबल समझकर उसे ओढ़े हुए सो रही थी और अपने सपनों में खोई हुई थी। उसे दुनिया जहां की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसे कोई परवाह थी। तभी अरुणिमा को कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई चमड़े की चीज उसके आसपास है, क्योंकि उसे चमड़े की बदबू आ रही थी। जब अरुणिमा से वो बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तो वो हड़बड़ा के उठ जाती है और फर्श पर ही बैठ जाती है। वो अपना चेहरा उठाकर देखती है तो सामने आस्तिक की भयंकर छवि नजर आती है। आस्तिक इस समय अरुणिमा के बहुत करीब खड़ा हुआ था, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने, और उसका जूता अरुणिमा के चेहरे के बहुत पास था, जिससे आस्तिक के चमड़े के जूते की स्मेल अरुणिमा को नींद से जगा देती है। पिछली रात आस्तिक का व्यवहार जैसा था, अरुणिमा आस्तिक को देखकर डर से कांप जाती है और फर्श पर ही बैठे बैठे पीछे खिसकने लगती है। लेकिन आस्तिक अपने पंजों के बल अरुणिमा के सामने बैठता है और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। ये आदमी क्या चीज है, कल रात तो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था और अभी मुस्कुराते हुए फूल बरसा रहा है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख ही रही थी कि आस्तिक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा के गालों पर अपने हाथ रख दिए। अरुणिमा अचानक से कांप जाती है, लेकिन आस्तिक उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, देखिए रानी साहिबा, मैं जानता हूँ ये जगह आपके लिए नहीं है और यहाँ के नियमों का पालन करने में आपको समय लगेगा, लेकिन इस महल के कुछ नियम हैं और एक रानी होने के नाते आपको उन्हें मनाना ही होगा। वैसे तो मुझे आपके ज्यादा देर तक सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रानी को ये शोभा नहीं देता है कि वो इतनी देर तक सोई रहे, क्योंकि आज इस महल में एक रानी के रूप में आपका पहला दिन है, इसीलिए मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आशा करता हूँ कि कल से आप जल्दी उठेंगे।